मुश्किल अल्फाज की वजाहत। आप जो भी आयते हैं ना, आप मुझे देखकर बताएं कि आज नए लफ्ज कौन से हैं, बिल्कुल नए जो आपने पहले नहीं पढ़े। हाथ खड़ा करें, आपके पास जो है वो 2 मिनट है। माशाल्लाह, हाथ तो पहले ही खड़ा हो गया, यानी आपको पता चल गया कि आज नए लफ्ज कौन से हैं, ये मुश्किल कौन से हैं। अच्छा ठीक है, तो चले ठीक है। अब बाकी लोग जो भी देख रहे हैं वो सोचते जाएं और फिर जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि अभी अभी आपने ये देखा। अब आपको ये नोटिस करना चाहिए कि नया लफ्ज अब कौन सा है जो नहीं आता। ये अलग बात है कि जो पहले आ चुका है, आपको बताया जा चुका है, फिर भी ना आता हो तो ये अलग बात है कि आप अपनी कॉपियां जो हैं उनको देखें, क्योंकि जो कुछ आप लिखती है वो आपकी कॉपियों की जीनत नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपके दिमाग की जीनत बनना चाहिए। दिमाग सबसे अच्छी जगह है ना, जहां चीजों को महफूज किया जाता है। ये आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर बहुत सी चीजों को महफूज करता चला जाता है। और माशाल्लाह, जो भी आपने सुना है आप सबको आता है, थोड़ा सा उसमें से फिर गो थ्रू होने की जरूरत है या उसको एक दफा देखने की जरूरत है। तो आप बताएं कि आयत नंबर 78, इसमें कोई ऐसा लफ्ज जो आपने ना पढ़ा हो और बिल्कुल नया हो। जी, यलबूना, शाबाश। इसका रूट वर्ड है लाम वो या, हाँ लाम वो या। इसके मानी है जैसे किसी चीज को बल देना, बटना, तोड़ना, मरोड़ना, ईंटना। जैसे रस्सी को बल दिया जाता है ना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है रस्सी को बल देना। जैसे किसी चीज को मोड़ना, और आप गर्दन मोड़ कर देखें तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सर मोड़ कर देखें उसके लिए भी। जबान को मरोड़ें, जबान को ऐसे थोड़ा सा टर्न कर ले, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, झंडा अगर हवा में लहराता है उसको भी बल आता है ना, लिवा, झंडे को भी कहते हैं लिवा, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और कोई इस आयत में मुश्किल लफ्ज, कोई मुश्किल लफ्ज और किसी को भी लगता हो मुश्किल तो बता सकता है, तो मुझे फिर आप बता दें ये अल्सनातहुम का रूट वर्ड क्या है, या आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, या मैं आपसे पूछूंगी जो आप पढ़ चुके हैं, है ना। इसका रूट वर्ड क्या है? हाँ, लाम सीन नून, लसन, और इसी से लिसान है, और अलसिना इसकी जमा है, या पहले भी पढ़ चुकी हैं। अच्छा फिर, और अच्छा इस आयत में कोई नहीं है तो आगे चलते हैं। आयत नंबर 79 में कोई मुश्किल लफ्ज? अभी हम जो है वो 79 आयत में हैं, और इसमें लफ्ज है हुक्मा। तो हुक्मा जो है, इससे मुराद जो है वो कहते हैं कि हा काफ मीम इसका रूट वर्ड है। इसके एक मानी तो है कजा और फैसले के, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं वैसे, लेकिन चले इसको फिर और समझ लें। कुरान में ये लफ्ज 3 मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है, उनमें से एक जो है वैसे इसके हकम के मानी है कजा, फैसला, लेकिन कुरान में ये 3 मानी में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से एक इसके मानी है मुजरद फैसले के, जैसे किसी चीज का फैसला करना। वकुन्ना ले हुक्महिम शाहिदीन, सूरत अंबिया में है, और सूरत अंबिया की आयत 78 है, और हम इनके फैसले के वक्त मौजूद थे। तो वहां पे ये लफ्ज जो है वो फैसले के लिए इस्तेमाल है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत माईदा की आयत 50 में कहते हैं, अफा हुक्मल जाहिलियती यबहूना वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, क्या वो जाहिलियत के फैसले के तालिब हैं, और अल्लाह से बढ़कर कौन फैसला करने वाला है। तो वहां पे भी ये हुक्म के मानी में इस्तेमाल हुआ है। दूसरे इसके मानी है बाज जगह पे, बाज मकामात में कुरान में ये कुव्वत फैसला और बसीरत के मानी में इस्तेमाल हुआ है। यही लफ्ज कुव्वत फैसला और बसीरत के मानी में इस्तेमाल हुआ है। सूरत अंबिया की आयत 74 इसकी दलील है। लूतन आतेनाहु हुक्मं व इल्मा, और लूत अलैहिस्सलाम, उनको हमने जो है वो अल्लाह ताला कहते हैं कुव्वत फैसला अता की और इल्म। इसी तरह सूरत मरियम की आयत 12 में ये जो है वो कुव्वत फैसला बसीरत के मानी में इस्तेमाल हुआ है। व आतेनाहुल हुक्मा सबीयं व हनानम मिन लदुन्ना व जका, और हमने इसको बचपन में फैसले की कुव्वत दी, और खास अपने पास से सोजो गदास और पाकीज़गी। تیسرے اس کے معنی ہیں، بعض آیات میں یہ امر اور حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے سورت غافر آیت 12 ہے، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، پس حکم خدائے بلند و حکم جو ہے خدائے بزرگ اور بلند کے لیے ہے. اسی طرح سورت قصص آیت 70 میں وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے حکم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ہم نے اس کے تین مختلف معنی پڑھے، ایک معنی فیصلے کے، دوسرے معنی بصیرت کے، تیسرے معنی کسی چیز کا حکم، یعنی امر اور حکم کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ والحکمہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے. اور کوئی لفظ اس آیت میں؟ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. ربانیینا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رابا با، تو رب سے ہے، تو ربانیینا، ربانی، ربانی جو ہے یہ دراصل یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پہ یہودیوں کے علماء کے لیے جو مذہبی عہدیدار ہوتے تھے، اور جن کا کام مذہبی معاملات میں لوگوں کی رہنمائی اور عبادات کے قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا. یعنی یہودیوں کے ایسے علماء جو مذہبی عہدیدار ہوں، یعنی مذہبی کاموں کی ذمہ داری پر ہوں، ان کے لیے ربانی لفظ استعمال کرتے تھے. اور خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم القولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے ربانی اور ان کے علماء ان کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کے مال کھانے سے کیوں نہ روکتے تھے. اسی طرح عیسائیوں کے ہاں اس کے ہم معنی لفظ ہے ڈائیون، ڈی آئی وی آئی این ای، یعنی ربانی کے ہم معنی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، تدرسون کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، درس سے ہے، درسا. اچھا آیت نمبر 80 میں کوئی مشکل لفظ؟ آیت 80 میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے نا. اچھا چلے مجھے یہ بتا دیں، ایامرکم بالکفری، تو اس میں آج آپ نے تجوید کا ایک رول پڑھا ہے جو ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنی ہے، نیم میں اقلاب کبھی نہیں ہوگا، ہے نا، اخفاء شفوی ہے. شاباش، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ با آ گئی ہے. کتنا لمبا کریں گی؟ دو حرکت کے برابر یا ایک الف کے برابر، ہے نا. ایامرکم بالکفر، اور اگر آپ معنی پر غور کریں تو ضروری ہے کہ یہاں پہ اخفاء شفوی ہو. معنی پر بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا تم کو حکم دیتا ہے کفر کا. یعنی ایک نبی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ تمہیں کفر کا حکم دے. تو جیسے سوچنے اس پہ غور تو کریں. اچھا چلے، میرا خیال ہے یہ ویسے بھی تجوید کا پیریڈ تو نہیں ہے، لیکن میں نے کہا چلو تازہ تازہ آج آپ سے پوچھ لیں، آج آپ نے پڑھا ہے. آیت نمبر 81 میں کوئی مشکل لفظ؟ اسری، اسری آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، کیا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ حمزہ سواد را، معنی کیا ہے اس کے؟ صحیح، یہ یعنی بوجھ اور قول و قرار اور اہم ذمہ داری جو ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ نے اس کو کہاں پہ خاص طور پہ پڑھا تھا؟ آپ کو کچھ یاد ہو کسی کو؟ ہاں شاباش، میں کہہ رہی تھی کہ اور اگر آپ کو نہ بھی یاد ہو، ویسے زیادہ جگہ پڑھا تھا، لیکن آپ سورت البقرہ کے اگر آخر میں آ جائیں، ہاں کما حملتا ہوں اللذین من، ہاں وہاں آپ نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرن، ہے نا، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا. تو ذمہ داری، بوجھ، وعد، قول، قرار، پختہ، یہ سب چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ آلریڈی پڑھ چکی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اور کوئی اس آیت میں مشکل لفظ؟ آیت 82 کوئی مشکل لفظ؟ آگے چلتے ہیں آیت 83. اچھا چلے، کرہن کا اپوزٹ بتا دے کیا ہے؟ قون. شاباش. اچھا 84 آیت میں کوئی مشکل لفظ؟ اچھا یعقوب کا روٹ ورڈ بتائیں. आयन काफ बाग, क्या मानिए इसके? पीछे आना, एड़ी के लिए भी आता है। उन एड़ियों के लिए आग है जो वुजू के दौरान खुश्क रहती है, ठीक है। तो ये भी हमें हदीस से पता चलता है। अच्छा, फिर आयत 85 में कोई मुश्किल लफ्ज? यब तगी मानी क्या है? हाँ, और वैसे ये चाहने के मानी में भी इस्तेमाल होता है और सिरकशी, सरकशी और जिद के मानी में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, आयत 86 में कोई, आप ये सही है, ये आता है सबको इसका भी? अच्छा, आयत 87, 88, 89, 90, हाँ 91 है, आप आगे जा रही है ना, मिल उल अर्दी है ना, तो ये भी वैसे आप पढ़ चुकी हैं। मिल MILL मिल नहीं है, मला आ, शाबाश, कहाँ पढ़ा था? वेरी गुड, आपने जब दूसरे पारे का एंड हो रहा था, बनी इसराइल के सरदारों के लिए ये लफ्ज जो था वो पढ़ा था, और वहां पे जो है उनके सरदारों ने क्या कहा था, ये आयत 246 है, सूरत अल बकरा 246, दूसरे पारे का एंड हो रहा है, जिसमें वाकया था, अलम तरा इलल मलाई मिम बनी इसराइला, फिर तूने उन मामले पर भी गौर किया कि बनी इसराइल के जो सरदारों को पेश आया था, मिम बनी इसराइला मिम बाद मूसा, है ना, तो मला सरदारों के मानी के लिए, है ना। तो अच्छा, असल में हमने क्या पढ़ा था तब? हाँ, जैसे इसके लफ्जी मानी है भरावा होना, मलाल इना, बर्तन का भर जाना, सरदारों को भरावा, यानी सरदारों के लिए मलाव क्यों आया, कि वो महफिल को भर देते हैं, उनकी शख्सियत में एक रोब होता है, और जिस महफिल में मौजूद होते हैं उसे महफिल भरी भरी लगती है। बाद शख्सियतें ऐसी होती है ना कि नहीं है तो लगता है बहुत ही खालीपन है, मौजूद है तो लगता है हर चीज भरी हुई है। तो असल में ये वही लफ्ज है, यहाँ पे मिल उ आ गया, आप वहां पे मला आ था, कालल मलाऊ। अच्छा, इस तरह का किसी सिपारे का कोई नाम भी है? अल मलाऊ, कौन से सिपारे का नाम है? नाइन सिपारे का, माशाल्लाह, देखिए आप सबको ये आता है ना, तो आपको थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं कि खोदने की अपने आप को जरूरत है, अपने आप को अपना जायजा लेने की जरूरत है। और जहाबन सोना, ये तो आपको और अच्छा आना चाहिए, तो बस और तो कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, यूं करते हैं, हमारे पास मैं आपसे 3-4 मिनट में आज जो तजवीद के रूल पढ़े हैं इन्हीं आयतों पे इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, या जो आपका तजवीद का टेस्ट होने वाला है, जिसमें कलकला है, इफा है, गुन्ना है, नून साकिन और तनवीन के जो अहकाम है वो वाले, और मीम साकिन के जो अहकाम है वो वाले भी, ठीक है, आज के सिर्फ लेसन से। तो मैं आपसे पूछती जाती हूँ, आप मुझे बताइए कि 78 आयत में जो है नून साकिन के और तनवीन के क्या अहकाम है, कितने अहकाम है नून साकिन और तनवीन के? हाथ खड़ा करना है आप लोगों ने, और फिर वो उस एक बंदा एक आयत को फिर बताएगा। जी हुमा, हाँ नून साकिन, नून मुशद्दत का नहीं बताना, वो तो नून मुशद्दत और नीम मुशद्दत में नेजल साउंड है ना, गुना करना, वो तो अलग चीज है। सबसे पहले क्या है? मिनहुम, मिनहुम में क्या है? इजहार है। एक वक्त में ना आपने से एक एक बोले ताकि समझ भी उसको आएगी और फायदा होगा, तो पहली चीज आपको क्या पता चली यहाँ पे? इजहार है, शाबाश। अच्छा, हुआ मिन इंदिल्ला, तो आप आगे चली गई। इससे पहले मुझे ये बताएं के ला फरी कहीं या लूना में भी कुछ है कि नहीं? हाँ, यानी तनवीन के बाद या आ गई। या जो है वो कौन से हरूफ में से थी? यरमलून में से। तो यरमलून इदगाम के लेटर कितने थे? छ अगर मैं एक हाथ खड़ा करूं तो बात बनेगी? नहीं, दूसरा एक साथ उसमें से लेना पड़ेगा, छह लेटर है। और इदगाम की कितनी किस्में आपने पढ़ी थी?
दो
दो, एक इदगाम बगुन्ना, दूसरा इदगाम बगैर गुन्ना। तो यहाँ पे बगुन्ना है कि बगैर गुन्ना है? बगुन्ना है। कैसे पता चल रहा है आपको, मुझे भी बताएं। यार है, कैसे पता चलेगा ये गुन्ना के साथ है कि बगैर गुन्ना के? आप क्या कहती हैं सुरैया? शाबाश, इसलिए कि इदगाम बगुन्ना के लेटर में से है ना, इसलिए बगुन्ना है। अगर लाम रा में से होता लर, तो बगैर गुन्ना के होता। तो आप इंदा में नहीं जा सकती थी, इंदे में नहीं जा सकती, जब तक ये लफरी कहीं अलबुना को क्लियर ना करें। फिर इसके बाद आप आगे देखती चली जाएं, तो आपको जो है ये एक आपने, हाँ जी अच्छा आप बताइए, अलसिनाता हूं पे क्या है? अभी हम सिर्फ नून साकिन और तनवीन का इस आयत में देख रहे हैं, है ना? शाबाश। अच्छा दूसरा, इन्होंने हुमा ने बिल्कुल ठीक बताया, और आप में से कोई बताए इन दिल लाही। हाँ, कौन बताएगा? आलिया, नून के बाद दाल आ रहा है, तो ये क्या चीज है? नून के बाद दाल आ रहा है, हाँ जी। फरत, आप क्या कहती हैं? इफा होगा। इफा के कितने लेटर पढ़े आपने? पांच, फिर पांच, और फिर पांच, 15, तो 15 लेटर हैं। दाल उनमें से एक है, तो इन दिल्लाही। अच्छा आपने तजवीद है, हाँ इन दिल्लाही है ना, उसको इफा करेंगी इन दिल्लाही। अच्छा फिर इसके बाद अगला जो इन दिल्लाही, इसमें भी कुछ है कि नहीं? शिमशार सेम है, हाँ वहां पे भी इख्फा होगा। तो अब इसके अलावा भी कोई नून साकिन और तनवीन के हुक्म है कि इतना ही है? नून साकिन और तनवीन का कोई और है? शाबाश, बिल्कुल सही है। तो वो क्या है? इजहार है। इजहार ये कौन बताएगा? ये देखें, यकुलूना हुआ मिन इंदिल्लाही, यहाँ पे तजवीद का कोई और रूल भी है? तजवीद का कोई और रूल? लुबना, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से आयन आ रही है ना, मिन इंदिल्ला, तो नून के बाद आयन है, और ये दो दफा है, फिर आगे नून के बाद आयन है। जैसे इख्फा दो दफा है, इसी तरह इजहार भी दो दफा है। ठीक है, तो ये था नून साकिन और तनवीन का हुक्म, रूल्स रेगुलेशन इस आयत में। दूसरी बात यह है कि आपने लामे जलाला भी पढ़ा था, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे लामे जलाला आया है कहीं पे, और लामे जलाला का क्या रूल जो है जो हमें फॉलो करना है? सलमा, लामे जलाला किसे कहते हैं? नहीं हो, है क्या चीज लामे जलाला? अल्लाह के लाम को लामे जलाला कहा जाता है, और उसको पढ़ने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। हाँ आपको आता है माशाल्लाह, बोलिए हैं? जब लामे जलाला के बाद या पहले? पहले, लामे जलाला से पहले फतह आए या फिर दम्मा, जबर आए या फिर पेश, तो अल्लाह के लाम को कैसे पढ़ते हैं? मोटा पढ़ते हैं। और अगर उससे पहले जेर आए तो कैसा पढ़ते हैं? हल्का पढ़ते हैं, यानी बारीक पढ़ते हैं। मोटा पढ़ने को मुफ़ख़्म कहते हैं, और बारीक पढ़ने को मुरक्कक, और वैसे कहते हैं हैवी और सॉफ्ट। मुफ़ख़्म और मुरक्कक, हैवी और सॉफ्ट, मोटा और पतला, बारीक, मोटा और बारीक। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो लामे जलाला अल्लाह का नाम है। अच्छा मुझे हाँ, अच्छा इन दिल्लाही में हम कैसा पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के नाम से पहले जेर है, तो जब भी कसरा होगी अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा, इन दिल्लाही, है ना? और अगर अल्लाह के नाम से पहले फतह आ जाए या दम्मा आ जाए, तो उसको हम मोटा पढ़ेंगे, मुफ़ख़्म पूर पढ़ेंगे। अल्लाह ही, अल्लाह ही, है ना। तो ये दोनों मिसालें आप पर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा फिर आपने जो है, अब इसमें कोई कलकला भी है कहीं पे? वयकुलूना, ये कलकला है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है कलकला? काफ के ऊपर सुकून होना जरूरी था। कलकला के लेटर कितने हैं? पांच, कुतबजद, और जरूरी है कि उनके ऊपर सुकून हो। अगर सुकून नहीं है तो कलकला नहीं है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं, अब मीम साकिन के जो आपने अहकाम पढ़े हैं उसमें से कोई यहां पर है? हाँ जी जी आप बताइए। शयाना, शाबाश, वेरी गुड। मीम साकिन के बाद लाम है और ये इजहारे शफवी है। और दूसरा कोई और बताए, क्योंकि आज तो सभी ने पढ़ा है ना, सभी स्टूडेंट को हाथ खड़ा होना चाहिए। दूसरा जी मरियम, हाँ क्या होगा ये? इख्वाए शफवी, शाबाश। अगर आप खाली इख्वा कहेंगी तो आप सही कह रही हैं कि गलत? गलत हो जाएगा, नून साकिन और तनवीन के अहकाम से मिल जाएगा। जरूरी है नीम साकिन के अहकाम में आप जो है शफवी साथ लगाएं, इजहारे शफवी, इख्फाए शफवी और इदगामे शफवी। तो दूसरा जो आपने, पहला आपने इजहारे शफवी बताया, दूसरा क्या बताया? इख्फाए, इख्फाए शफवी। इख्फाए शफवी के कितने लेटर हैं? एक, ज्यादा नहीं हो सकते? क्यों? बस बाई है, शाबाश। अच्छा और बताएं, कोई और कोई रूल है इसमें जो आपने पढ़ा? नहीं है ना। एक और भी है, शाबाश। हाँ बिल्कुल सही है कि वहुम यालमून, मीम साकिन के बाद या है और ये इजहारे शफवी है। तो बहरहाल ये था, आप इस तरह आपस में बैठकर जायजा लिया करें, देखा करें, जो चीज पढ़ती है ना उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इसी सबक की रोशनी में आप ना, ये जो आज सबक है आपका, यही कुरान की आयतें हैं, इस पर तजवीद के रूल जितने पढ़ चुकी हैं ना, आप उसको फॉलो करें, देखें आज घर जाके भी, ताकि आपके टेस्ट की थोड़ी तैयारी हो जाए और आपको समझ आए, और दूसरे से पूछे। मैंने ये नहीं कहा कि यही टेस्ट होगा, टेस्ट तो आपकी समझ का होगा, आयतें कोई भी हो सकती हैं, इस तरह होगा, इस तरह होगा, यही नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين